स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 19 जून और दिन रविवार। रघुराम राजन दोबारा नहीं बनेंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर।
आरबीआई एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन की छवि जो है बिल्कुल अब कम हो जाएगी। रघुराम राजन के रहने से उसकी छवि बड़ी थी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट किस्म का आदमी था।
बेल्जियम में 3 लोगों के खिलाफ चरमपंथी साजिश रचने का मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ में फसल बीमा योजना से किसान क्यों है नाराज।
बीमा 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 करके अतका हल्ला करीन, कई कई हजार खाता ला काट लीन। अब जो मुआवजा के बेरा आईस तो 20-20 रुपए दे के भई गए, न बीज के खर्चा, न पानी के, न मजूरी के। तय मोला समझा कौन बात की बीमा रहीस।
और भी बहुत कुछ, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन के कार्यकाल पूरा होने पर पद से हटने की खबर आने के बाद वित्त मंत्री ने फेसबुक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, डॉक्टर रघुराम राजन ने अपना मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने पर फिर से शिक्षा के क्षेत्र में जाने की इच्छा जाहिर की है। सरकार उनके किए गए अच्छे कामों की सराहना करती है। वहीं भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि डॉक्टर रघुराम राजन के कार्यकाल खत्म होने के बाद पद से हटने के फैसले से मैं निराश हूं। बेल्जियम में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 3 लोगों पर हत्या की कोशिश सहित चरमपंथ के मामले तय किए गए हैं। पुलिस ने रात भर चली धरपकड़ में ब्रसेल्स के आसपास के इलाकों से 12 लोगों को हिरासत में लिया था, बाकी के 9 लोगों को पूछताछ करके छोड़ दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख बान की मून ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वो प्रवासी समस्या से निपटने में ग्रीस का सहयोग करें और ग्रीस पर अकेले ही प्रवासियों का बोझ न डालें। प्रवासी संकट पर चर्चा के लिए बान की मून ग्रीस यात्रा पर हैं। ग्रीस में सीरिया और इराक से भागकर आए करीब 50,000 प्रवासी हैं और अभी उनके भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरे देशों ने अपनी सीमाएं प्रवासियों के लिए बंद कर रखी हैं, इसलिए वो और कहीं जा नहीं पा रहे हैं। बान की मून ने कहा,
Despite the country's own economic difficulties, Greece has been generous.
आर्थिक समस्या से जूझने के बावजूद प्रवासियों के प्रति ग्रीस का रवैया काबिले तारीफ है। ग्रीस हमारी तारीफ के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत से सहयोग का भी हकदार है। हम सभी को प्रवासी समस्या सुलझाने के लिए साथ आना होगा, किसी एक पर ही ये पूरा बोझ डालना ठीक नहीं। ये थे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश में राजधानी ढाका के एक इलाके में पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक सामान बरामद किया है। पुलिस ने चीन में निर्मित 100 से ज़्यादा गन और विस्फोटक सामान पकड़ा। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार किसने छुपाए। पिछले दिनों बांग्लादेश में कई धर्मनिरपेक्ष लेखकों और ब्लॉगरों की हत्या हुई है, जिसके बाद पुलिस इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हथियारों की ये बरामदगी भी इसी अभियान के तहत हुई है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोयगु ने सीरिया पहुंचकर राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। उन्होंने सीरिया के लटाकिया प्रांत में रूसी एयरबेस का भी मुआयना किया। रूसी रक्षा मंत्री की ये यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि असद को लेकर अमरीका और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है जून की 19 तारीख और दिन रविवार और इस वक्त हो चुके हैं 6:33:44। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि वो इस साल सितंबर में अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद पद से हट जाएंगे और उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं चाहिए। वे अकादमिक क्षेत्र में लौट जाना चाहते हैं। मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि सरकार उनके फैसले का सम्मान करती है और उत्तराधिकारी पर फैसला जल्द ही ले लिया जाएगा। वहीं पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस के पी चिदंबरम ने कहा है कि मौजूदा सरकार डॉक्टर राजन के लायक नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
Raghuram Rajan is an employee of the government of India. We don't select employees on the basis of a popular vote and that too of industrialists.
सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि रघुराम राजन एक सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी पॉपुलर वोट के आधार पर नहीं चुने जाते। हालांकि रघुराम राजन के इस फैसले को सुब्रमण्यम स्वामी के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने रघुराम राजन को पद से हटाने की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था,
आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो मेरी राय में हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं है और उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने जो देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इस बहाना से कि मुद्रास्फीति को या इन्फ्लेशन को हम इससे रोकेंगे, इससे देश के साथ बड़ा नुकसान हुआ है, सारा इंडस्ट्री कोलैप्स हुई है और इस कारण से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, उसको जितना जल्दी छुट्टी करके वापस शिकागो भेज सकते हो तो भेजना चाहिए,
उसको वापस शिकागो भेजना चाहिए। ये कह रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन ये बयान तकरीबन उन्होंने एक डेढ़ महीने पहले दिया था। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने जाने माने अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी से बात की और रघुराम राजन के इस फैसले की वजह और इससे जुड़े तमाम दूसरे पहलुओं को समझना चाहा।
मेरे ख्याल में वो शायद उम्मीद कर रहे थे कि सरकार उनको बताएगी दूसरी टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकार ने बात ही नहीं किया शायद उनके साथ, तो वो सोच ले कि भाई ये लोग का रवैया बन गया है कि मेरे खिलाफ है, तो उसके पहले वो बोले कि मैं जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में वो डिसीजन ले लिए कि उनके लिए उचित होगा कि वापस चले जाए।
आपको लगता है कि रघुराम राजन जब आरबीआई के गवर्नर के पद से हट जाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था की दशा दिशा पर किसी तरह का कोई असर, नकारात्मक असर कुछ पड़ेगा?
फर्क तो पड़ेगा मगर दिशा पे नहीं, दिशा जो उन्होंने बता दिया है, एनपीएस को उन्होंने फ्लैग कर दिया है, बैंक की अंडर कैपिटलाइजेशन को फ्लैग किया है, रुपी को कैसा डिफेंड करना वो भी फ्लैग किया है, इनके कार्यकाल में तो रिजर्व भी $100 बिलियन से बढ़े हैं, ये जो एनपीएस की इश्यूज है बहुत सालों से आ रहे हैं मगर अब तक कोई आरबीआई गवर्नर ने इनको उछाला नहीं, तो इन्होंने आके उछाला, तो इसके पहले भी बड़े लोग थे, दिग्गज लोग थे आरबीआई गवर्नर, वो खामोश बैठे और बैंक में जो गड़बड़ होता था उसके साथ भी वो खामोश बैठे रहे, जिस तरह चेयरमैन को अपॉइंट करना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बदलाव करना, ये सब जो हो रहा था बैंक में, जिस तरह लेंडिंग हो रहा था और जिस तरह क्रोनी कैपिटलिस्ट और बैंक के लीडर्स, बैंक के टॉप एग्जीक्यूटिव मिले थे, इसके बारे में कोई आरबीआई गवर्नर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की, हालांकि सबकी जानकारी में था मगर कोई कुछ नहीं कहा। रघुराम राजन ने आके एक पद पे जो रिस्पॉन्सिबल पद है उस पद को इस्तेमाल करके उन्होंने बताया कि ये काम ठीक नहीं है, ये चलना नहीं जा रहा, जो जो कंपनी जो लोन लिए हैं और जो इंटरेस्ट को भी सर्विस नहीं कर रहे उनको सारा लिस्ट करवा दिया, उनके नाम छपवा दी। मेरे ख्याल में वो लॉबी तो खुश होगा, आज सेलिब्रेट करेगा, बैंक के डायरेक्टर्स हैं जो सब शामिल थे इसमें, जो बड़े पैमाने पे जो घपला चलता था वो भी खुश होंगे, उनको भी रिलीफ मिलेगी।
आपको लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से रघुराम राजन के खिलाफ बयानबाजी की, उन्हें आरबीआई के गवर्नर के पद से हटाने की बात कही, मांग की, कहीं कुछ इससे रघुराम राजन आहत हुए होंगे?
मेरे ख्याल में रघुराम राजन उसको सीरियसली नहीं लिए मगर वो शायद एक्सपेक्ट करते थे कि प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी, उन्होंने एमपी बनाया, हाल में एमपी बनाया प्रधानमंत्री ने उनको, तो उनकी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे, कुछ टिप्पणी देंगे कि ऐसा बात करना शोभा नहीं देता उनको, और प्रधानमंत्री तो खामोश बैठे, वित्त मंत्री खामोश बैठे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई आधार था जो सुब्रमण्यम स्वामी कहता है मगर फिर भी खामोश बैठे, वो खामोश बैठने में एक बड़ी आवाज आती है।
क्या मोदी सरकार रघुराम राजन से किसी तरह से, किसी वजह से खफा थी, नाराज थी, उन्हें इस पद से हटाना चाहती थी?
वजह क्या है, अच्छा काम कर रहे हैं, एनपीएस इश्यू अगर वो फ्लैग नहीं करते हैं और जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं अदानी अंबानी अनिल अंबानी एस आर ब्रदर्स ये सब जिनको इनको उनका नाम उछाला है, उसकी वजह से असंतुष्ट होंगे उनके, क्योंकि ये सब राजनेताओं के साथ मिले हैं बड़े बड़े ग्रुप्स, देश का तो नुकसान होगा, क्योंकि एक मजबूत और एक आदमी जो जिसमें मॉरल कैरेक्टर है वो उस किस्म का आदमी जो सब्जेक्ट का भी मास्टर था, जिसको इंटरनेशनल टीचर भी है, वो जा रहा है।
कोई चेहरा आपको नजर आता है जो रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर रघुराम राजन की जगह ले पाएगा?
उनके काबिलियत का चेहरा मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई रिटायर्ड सेक्रेटरी होगा, जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी होगा, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। अगर हम देखे हैं कि इस तरह की व्यक्ति को आप लाएंगे तो खामोश बैठे रहेंगे, हर चीज जो होता है होते रहेगा और ये सरकार के दबाव में आरबीआई चलते रहेगा। आरबीआई एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन की छवि जो है बिल्कुल अब कम हो जाएगी। रघुराम राजन के रहने से उसकी छवि बड़ी थी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट किस्म का आदमी था।
ये थे जाने माने अर्थशास्त्री मोहन गुरु स्वामी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। बेल्जियम में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 3 लोगों पर हत्या की कोशिश सहित चरमपंथ के मामले दर्ज किए गए हैं। ब्रसेल्स में हुए 2 धमाकों के 3 महीनों के बाद ये कार्रवाई की गई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। इसी साल 22 मार्च को ब्रसेल्स एयरपोर्ट और एक मेट्रो स्टेशन पर धमाके में 32 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। सुनिए एक रिपोर्ट प्रभात पांडे से।
बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में रात भर चला पुलिस का अभियान। उसके बाद आसपास के इलाकों से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद 3 लोगों पर हत्या की कोशिश और चरमपंथी साजिश के शक में चरमपंथ के मामले तय कर दिए गए। बाकी 9 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम समीर सी उम्र 27 साल, मुस्तफा बी उम्र 40 साल और जावेद बी उम्र 29 साल हैं। यूरोकप 2016 में शनिवार को बेल्जियम और आयरलैंड का मैच था। राजधानी ब्रसेल्स के कई इलाकों में विशाल टीवी स्क्रीन पर इस मैच को दिखाने की व्यवस्था की गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन जगहों पर कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया, जिसके बाद आतंक निरोधी दस्ते की कार्रवाई में ये गिरफ्तारियां हुई। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने देश के लोगों से कहा है कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और घबराने की जरूरत नहीं है। चार्ल्स मिशेल के मुताबिक
Nous pouvons confirmer en faisant référence à la communication du parquet fédéral de ce matin.
हमने तय किया है कि मैच को दिखाने के इस तरह के सार्वजनिक आयोजन जारी रहेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीनी चाहिए। पुलिस का काम रंग ला रहा है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। संदिग्ध लोगों पर छापे जारी हैं और न्यायिक अधिकारियों ने चरमपंथ के आरोप भी गिरफ्तार लोगों पर तय कर दिए हैं। ये दिखाता है कि पुलिस और जाँच एजेंसियाँ अपना काम कितनी मुस्तैदी से कर रही हैं। ये थे बेल्जियम के प्रधानमंत्री के शब्द। वैसे शनिवार को यूरो कप में बेल्जियम की आयरलैंड पर जीत से बेल्जियम में जश्न का माहौल भी देखा गया। बेल्जियम की सरकार के मुताबिक आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
ये थे प्रभात पांडे। और बेल्जियम के बाद एक दफा फिर लौटते हैं भारत और चलते हैं पूर्वी राज्य झारखंड। झारखंड के लातेहार जिले के मनिका थाने में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर अकेले में करीब 8 घंटों तक पूछताछ और यातना का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पीड़ित बच्ची करीब 36 घंटे तक बेहोश रही। हालत बिगड़ने के बाद लड़की को इलाज के लिए रांची में भर्ती कराया गया है। बाल संरक्षण अधिकार आयोग और महिला आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। रांची से सुनिए नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में भर्ती 15 साल की यह लड़की होश में तो आई है, पर उनकी आंखों में अब भी खौफ साफ है। फिलहाल बातचीत करने से उन्हें मना किया गया है। वे मनिका थाना क्षेत्र के राखी कला गांव की रहने वाली हैं। उनकी मां रीता देवी बताती हैं कि गांव की एक दूसरी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई हैं। इसी सिलसिले में पुलिस उनके घर आई और धमकी भरे लहजे में बेटी को पूछताछ के लिए थाने पर आने को कहा। उनका आरोप है कि थाने के एक कमरे में बेटी को रखा गया जबकि उन्हें बाहर कर दिया गया। पुलिस इस बात पर जोर दे रही थी कि वे फरार हुई उस लड़की के बारे में सब कुछ जानती है, जबकि बेटी इन बातों से इनकार करती रही। पुलिस के रवैये पर पीड़िता की मां का आरोप है
8 बजे घुसाए, 6:30 बजे निकाले और हम जो है सोच रहे हैं कि बाहर में बरंडा में लास्ट में फिर आशा देखते देखते तो दीदी के दिए अति समोसा दिए 2 और पानी दिए बोतल में कि भाई ऐसा तो मन लड़की नहीं है कि कोई ऐसा कि मतलब ओकरा हम बंद करके इसे रखें और बाहर बरंडा में रखते।
बेटी की हालत पर वे बताती हैं
फिर कल 11 बजे आ जाना समझी, कहें कि हम लोग कहें कि ठीक है सर आ जाएंगे। आए बार से निकले रोड से तैसे ही देख रहे हैं कि गाड़ी टेम्पो में बैठा था पूरा इस हाथ हो जैसे चिमुरने लगा और पूरा एकदम गर्दन ऐंठने लगा। अब पूछने तो कुछ बोलिए नहीं रही, अब घर लेते तक पूरा रोवा कानी पड़ गया। फिर बीके स्कूल के गाड़ी से लेच करके तुम्हारा लेच करके भर्ती किए गया।
अब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और महिला आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर मनोज कुमार ने पुलिस महानिदेशक डीके पांडे से मिलकर बताया है।
नाबालिग बच्ची है और बच्ची को पुलिस ने थाना में बुलवाया और कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। अगर कोई लड़की है तो उसको महिला पुलिसकर्मी पूछताछ कर सकती, पुरुष नहीं कर सकता। तो जजे का उल्लंघन है, थाना में 10 घंटा नहीं रखना है उसको। जजे का उल्लंघन है, पुलिस वर्दी में था, वर्दी में नहीं रहना है, ये जजे का उल्लंघन है। तो जजे से और उल्लंघन किया है इन लोगों ने।
इस बीच लातेहार के SP अनूप बिरथारे ने जानकारी दी है।
जो लोकल SI है जिसमें जितने की उनको पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ की थी, उनको प्रथम दृष्टया सस्पेंड किया है जैसे कि जांच इंडिपेंडेंट हो सके, और SDPO बरवाली को जांच के लिए दिया है, वो जांच रिपोर्ट देंगे, फिर उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
कुछ दिनों में पीड़िता स्वस्थ होकर घर तो लौट जाएगी, पर तफ्तीश के नाम पर पुलिस की कथित प्रताड़ना भूल पाना उनके लिए शायद मुश्किल होगा। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
और पूर्वी राज्य झारखंड से अब चलते हैं भारत के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ठाणे के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी पर एक बड़े ड्रग्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में ड्रग्स की समस्या और इस पूरे मामले पर मुंबई से अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
इस वर्ष 18 अप्रैल को ठाणे पुलिस ने एक नाइजीरियाई नागरिक को ड्रग्स के अवैध धंधे के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसकी पूछताछ के बाद सोलापुर के औद्योगिक इलाके में एवन लाइफ साइंस नामक दवाई बनाने वाली कंपनी पर पुलिस ने छापा मारा और वहां से 2000 करोड़ रुपए मूल्य का 22 टन एफेड्रिन नामक ड्रग्स बरामद किया था। इस मामले की तफ्तीश में विकी गोस्वामी और उनकी पत्नी ममता कुलकर्णी का नाम सामने आया, जिसके बाद ठाणे पुलिस ने इस दिशा में तफ्तीश शुरू कर दी। इस पूरी तफ्तीश और उसके नतीजे के बारे में ठाणे के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बताया
कि जो हमारे पास नई एविडेंस आई है, नए बयान आए हैं, उसके आधार पर ममता कुलकर्णी भी हमारे केस में एक आरोपी हैं। 164 का बयान जो कि कोर्ट के समक्ष लिया जाता है, ऐसे दो 164 के बयान किए गए हैं कोर्ट के समक्ष। इन विटनेसेस ने या आरोपियों ने ऐसा बताया है कि ममता कुलकर्णी ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें। जो मीटिंग्स हुई केन्या में 8 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी, जिसमें कुल 8 लोग हाजिर थे ऐसी जानकारी है, उसमें जयमुखी हाजिर था, मनोज जैन हाजिर था, किशोर राठौर हाजिर था, विकी गोस्वामी हाजिर था, ममता कुलकर्णी थी, और एक और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्मगलर है डॉक्टर अब्दुल्ला, वो और उनके दो साथी हाजिर थे।
कुछ महीनों पहले मुंबई पुलिस ने वर्ली इलाके में रहने वाली बेबी पाटनकर नामक महिला को अवैध ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। चौंकाने वाली बात यह थी कि मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल धर्मराज कालोखे भी उसमें शामिल था। पुलिस ने कालोखे के सतारा स्थित घर से 23 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद किया था। मुंबई तथा महाराष्ट्र में पनप रहे ड्रग्स के इस धंधे की यह एक झलक भर है। जानकार मानते हैं कि वास्तविक रूप से यह अवैध धंधा कई हजार करोड़ रुपए का है। ड्रग्स की समस्या पर काम करने वाले समाजसेवी आनंद मंगनाले का कहना है कि यह मुंबई की समस्या पंजाब की समस्या से अलग नहीं है।
जो मेन ड्रग्स यूज हो रहे हैं अभी, जो पकड़ा गया वो भी एफिड्रिन है, जो कि ब्लड लो ब्लड प्रेशर वगैरह के ट्रीटमेंट में काम होता है। तो मोस्टली जो चल रहे हैं ये पार्टी ड्रग्स चल रहे हैं, जिससे कि रात भर आप डांस कर सकते हैं, रात भर आप एंजॉय कर सकते हैं, उसका हाई होता है, और उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं बाद में उस पर फोकस नहीं किया जाता। अभी जो एज ग्रुप भी जो बताया जाता है वो मोस्ट ऑफ द एज ग्रुप इज 16 to 25, इसकी वजह से इसका प्रमाण पर ज्यादा बढ़ रहा है। मैंने भी पंजाब से कंपेयर करेंगे, पंजाब से तो काफी बड़ा है महाराष्ट्र, एवं मुंबई इकोनॉमिकली सोशली इट्स वेरी मतलब सोशली ज्यादा हायर लेवल पे है। पंजाब में हीरोइन का कंजम्पशन 7,500 करोड़ का वगैरह होता है, तो उसके आप अंदाजा लगाइए कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल होने के नाते, और ये ड्रग्स इनिशियली जो फ्लक्चुएट होते हैं मार्केट में भरे जाते हैं वो काफी चीप रेट पे काफी सस्ते में दिए जाते हैं ताकि लोग एडिक्ट हो जाए और बाद में उसका रेट बढ़ता जाता है। अब पर ग्राम आप लगाइए तो लीस्ट पॉसिबल पर ग्राम इज 250-300 रुपए में एक ग्राम का है। अभी अगर 200 केजी वगैरह पकड़ा गया है तो उसका आराम से 3-4 हजार करोड़ तो कहीं नहीं जाएगा, जो कि एक पकड़ा गया अभी। और ऐसे एक जो पकड़ा जाता है उसके पीछे 100 नहीं पकड़े जाते, तो उस हिसाब से आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं बिल्कुल।
यदि समय रहते इस समस्या से निपटा नहीं गया तो भविष्य में यह उग्र रूप धारण कर लेगी और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी।
ये थे मुंबई से अश्विन अघोर। और अब चलते हैं सेंट्रल इंडिया यानी छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए अपनी सरकार की फसल बीमा योजना की बार बार सराहना करते रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान इस योजना का नाम सुनकर ही भड़क जाते हैं। ये वो किसान हैं जिन्हें फसल बीमा के नाम पर 5, 10 या 20 रुपये दिए गए हैं। रायपुर से आलोक पुतुल की ये रिपोर्ट सुनिए।
हमर छत्तीसगढ़ सरकार
खरीदी मदाम धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के इस सरकारी विज्ञापन में भले धान के किसानों की समृद्धि और सरकार की वाहवाही की जा रही हो, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान उगाने वाले किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर पहले से ही परेशान हैं और रही सही कसर मौसम आधारित फसल बीमा योजना ने पूरी कर दी। 2014-15 में किसानों से धान की फसल बीमा के नाम पर 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम की रकम वसूल कर निजी बीमा कंपनियों को दे दिया गया। छत्तीसगढ़ में सरकार ने बीमा करने का जिम्मा निजी क्षेत्र की 7 बीमा कंपनियों को सौंपा था। इसके तहत राज्य के लगभग 10.25 लाख किसानों की फसलों का बीमा किया गया। बदले में इन बीमा कंपनियों को 3,35,00,000,000 रुपये से अधिक की रकम प्रीमियम के तौर पर दी गई, लेकिन जब मुआवजा देने की बारी आई तो किसान ठगे से रह गए। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ की भगवंतीन बाई फसल बीमा का नाम सुनते ही भड़क जाती हैं।
पूरे गांव में एक कोठन आदमी ले 100 रुपये मिले हो ही, तय जो कहिवे मैं करूँ, बीमा 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 करके अतका हल्ला करीन, कई कई हजार खाता लकाट लीन। अब जो मुआवजा के बेरा आईस तो 20-20 रुपये दे के भई गए। 20 रुपये में 20 दाना बीज नहीं मिलते, न बीज के खर्चा, न पानी के, न मजूरी के। तय मोला समझा कौन बात की बीमा रहीस।
मनेंद्रगढ़ के किसान और सामाजिक कार्यकर्ता रमाशंकर गुप्ता का कहना है कि सरकार ने धान की फसल का बीमा नहीं बल्कि बारिश का बीमा किया था। जुलाई में अगर बारिश नहीं हुई या कम बारिश हुई तो धान की फसल यूं ही मर जाती है, लेकिन अगस्त और सितंबर में अगर बारिश हो गई तो फसल बीमा का लाभ किसान को नहीं दिया गया।
नुकसानी का बीमा का फसल के उत्पादन से कोई मतलब नहीं है। महीने में पानी गिर गया तो उसका आप क्लेम नहीं दोगे। हो गया साहब, 20,000 का बीमा था, 20,000 पे प्रीमियम लिए, 20,000 का बीमा है और देखोगे कितना। ये फसल बीमा कहाँ, ये तो बारिश का सट्टा है। अब बारिश का सट्टा खेलवा रहे हो, ये क्राइम है ये।
बीबीसी के पास जो सरकारी दस्तावेज उपलब्ध है, हमने कई दिन लगाकर उन दस्तावेजों का अध्ययन और विश्लेषण किया। उदाहरण के लिए कोरिया जिले के 4 गांव छिंदडाड़, धौरा टिकरा, पटना और कंचनपुर गांव के कुल 3429 किसानों का बीमा किया गया था, लेकिन इन किसानों को 25 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से 1,27,000 के आसपास की रकम का भुगतान किया गया। यानी इस बीमा योजना में किसी किसान के पास अगर आधा एकड़ की जमीन थी तो बीमा करने वाली कंपनी ने उस किसान को महज 5 रुपये का मुआवजा दे दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अपने ही विभाग के दस्तावेजों को खारिज कर देते हैं।
यह ऐसा नहीं है, कोई भी छत्तीसगढ़ में ऐसा एक भी किसान नहीं है जिसको 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये का मुआवजा मिला हो, और यह जबरदस्ती किसानों को बरगलाया जा रहा है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अगर उन्होंने ऋण लिया है तो बैंक अपने ऋण को सुरक्षित करने के लिए उसका बीमा करवाएगा।
किसान नेता आनंद मिश्रा का कहना है कि किसानों की फसल बीमा मामले की जांच एसआईटी से करवाई जानी चाहिए।
सर, 2003 में एक बार इंश्योरेंस का पैसा कुछ हमारे इलाके में मिला था, इसके बाद से आज तक लोगों को पैसा मिला है, ये आप ढूंढने से भी आपको आदमी नहीं मिलेंगे जिन ये राशि मिली है।
छत्तीसगढ़ में मानसून बस दस्तक देने ही वाला है, खेतों में धान लगाने की तैयारी भी चल रही है। अगले सप्ताह से ही फसल बीमा की योजना लागू करने के लिए सरकारी अमला भी सक्रिय हो जाएगा, लेकिन किसानों में इस फसल बीमा को लेकर कोई उत्साह होगा इसकी उम्मीद तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
तो छत्तीसगढ़ में किसान फसल बीमा से नाराज। एक दफ़ा फिर आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत और मैं हूं इकबाल अहमद, और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और हमारे सहयोगी प्रभात पांडे तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं। जी प्रभात, बताएं क्या हैं सुर्खियां आज।
जी इकबाल जी, मैं आपको बताऊं कि सुर्खियां वही हैं, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के दूसरा कार्यकाल नहीं लेने के फैसले पर प्रतिक्रियाओं का दौर। इसके अलावा उड़ता पंजाब के बाद अनुराग कश्यप की अब अगली फिल्म भी सेंसर बोर्ड में मुसीबत में फंस गई लगती है, और ड्रग रैकेट में शामिल बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी। ये वो खबरें हैं जो अखबारों की सुर्खियां बनी
और जिनके बारे में हमने अपने बुलेटिन में जिक्र भी किया।
जी जी, इसमें द इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी दिलचस्प हेडलाइन लगाई है रघुराम राजन के दूसरा कार्यकाल नहीं लेने पर। उन्होंने नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त नारे की तर्ज पर चुटकी लेते हुए हेडलाइन दी है, रघुराम राजन मुक्त आरबीआई।
चलिए कम से कम एक सपना तो कामयाब हुआ
जी। इसमें अखबार के मुताबिक भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राजन पर जो लगातार हमले किए और सरकार का स्वामी के बयानों पर चुप्पी साधे रहना राजन के पद छोड़ने के फैसले की वजह हो सकती है, ये अखबार कहता है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में एक और खबर छपी है जिसके मुताबिक श्रीनगर में प्रतिष्ठित DPS स्कूल ने अपनी एक मुस्लिम महिला टीचर को कहा कि आप बुर्का पहनकर स्कूल में नहीं आ सकती, तो टीचर ने नौकरी छोड़ दी, ये खबर। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत की ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार को पहले पन्ने पर जगह दी है। वैसे कल के मैच में भारत बहुत जोरदार खेला और 0-0 से मैच निर्धारित समय तक टाई था, उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में भारत हारा। इसके अलावा एक और दिलचस्प खबर छपी है कि इसी सप्ताह 16 जून को लंदन में एक बुक लॉन्च समारोह हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि इसमें जो भारत के जो भगोड़ा करार दिए गए उद्योगपति हैं विजय माल्या वो भी शामिल थे और इसमें भारत के ब्रिटेन में उच्चायुक्त नवतेश सरना भी शामिल थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने विजय माल्या को देखा तो वो उस समारोह को छोड़कर चले गए। हाँ,
इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी बहुत हो रही है।
जी। इसके अलावा हिंदुस्तान अखबार ने एक दो तरीके से अपने कॉलम को डिवाइड किया है, एक में लिखा है गर्व और दूसरे में लिखा है शर्म। गर्व में उसने लिखा है हैदराबाद में शनिवार को जो वायुसेना में कमीशन मिलने के बाद भारत की जो पहली 3 महिला पायलट हैं जो कि फाइटर पायलट जो कि फाइटर प्लेन उड़ाएंगी, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंट, उनकी जो है वी शेप में एक विक्ट्री का साइन बनाते हुए
सराहनीय है।
और शर्म में लिखा हुआ है ममता कुलकर्णी जो बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री थी जिनका करियर ज्यादा नहीं चल पाया तो वो ड्रग रैकेट में फंस गई थी, तो वो वाली खबर दी हुई है। जी
बहुत शुक्रिया प्रभात आपका अखबारों की समीक्षा का। और अब वक्त हो चला है खेल समाचार का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। आखिरकार मेजबान जिम्बाब्वे ने एक दिवसीय सीरीज में 3-0 से मिली हार के सदमे से उभरते हुए भारत को कल हरारे में खेले गए पहले 2020 मुकाबले में 2 रन से हरा दिया। भारत के सामने जीत के लिए 171 रनों का लक्ष्य था, लेकिन 20 ओवर की समाप्ति के बाद वो 6 विकेट खोकर 168 रन बना सका। अंतिम गेंद पर जीत के लिए भारत को 4 रनों की जरूरत थी, तब भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी माजीवा की गेंद पर केवल 1 रन बना सके। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर जिम्बाब्वे ने एल्टन चिंगुमरा के नाबाद 54 और मेलकॉम वालेर के 30 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए। दोनों टीमों के बीच दूसरा 2020 मैच कल खेला जाएगा। उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला गया जिसे ऑस्ट्रेलिया ने पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से अपने नाम किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थी, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया के आरान जलावस्की, डैनियल बेले और साइमन आर्चर्ड गोल करने में कामयाब रहे, जबकि भारत के लिए केवल हरमनप्रीत सिंह ही गोल कर सके। 3-1 से हार के साथ ही भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि जर्मनी ने ग्रेट ब्रिटेन को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। उधर अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित की जा रही विश्व ओलंपिक क्वालिफाइंग मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के सतीश कुमार 91 किलो से अधिक भार वर्ग और सुमित सांगवान 81 किलो भार वर्ग में पहले दौर के मुकाबले जीतने में कामयाब रहे।
तो बाप से विदा लेने का वक्त आ चला है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन के कार्यकाल पूरा होने पर पद से हटने की खबर आने के बाद उन्होंने उनके कार्यकाल की सराहना की। बेल्जियम में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत 3 लोगों पर हत्या की कोशिश सहित चरमपंथ के मामले तय किए गए हैं। पुलिस ने रात भर चली धरपकड़ में ब्रसेल्स के आसपास के इलाकों से इन लोगों को गिरफ्तार किया। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सीरिया पहुंचकर राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की है। रूसी रक्षा मंत्री की यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि असद को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों की संस्था के प्रमुख फिलिपो ग्रैंडी ने अफगान शरणार्थियों की बुरी हालत के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत को दोषी ठहराया और कहा है कि विश्व समुदाय उन्हें भूलता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख बान की मून ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वो प्रवासी समस्या से निपटने में ग्रीस का सहयोग करें और ग्रीस पर अकेले ही प्रवासियों का बोझ न ला दें। यूरो कप के एक अहम मुकाबले में ग्रुप एफ में पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया का मैच 0-0 से ड्रॉ रहा। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। अपने तमाम साथियों के साथ नमस्कार।